ओम शांति। प्रश्नों से पार। प्रश्न है, मेरी नेचर बहुत सेंसिटिव है, आत्मविश्वास की कमी है, एकाग्रता की कमी है, मैं अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाऊं? मन में हमेशा डर रहता है। तो प्रश्न है, नेचर सेंसिटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है और भय है मन में, तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो अशरीरी बनने का अभ्यास किया जाए। सेंसिटिव नेचर जहां होगा वहां पर बहुत सारी चीजें साथ साथ हो सकती है। जहां सेंसिटिव नेचर होता है वहां पर एंजाइटी होती है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, हो सकता है अंडरलाइंग डिप्रेशन भी है थोड़ा। जहां सेंसिटिव नेचर है वहां पर बार बार अपसेट होना होता है, बार बार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता परिस्थितियों को। जहां सेंसिटिव नेचर होता है वहां पर ओवर रिएक्शन होती है। जहां सेंसिटिव नेचर होता है वहां पर एक्चुअली सेंसिटिव नेचर जो है उसके दो पहलू है। एक तो ऐसे व्यक्तियों व्यक्ति में दया करुणा बहुत ज्यादा होती है, दूसरों के दर्द दुख पीड़ा ज्यादा महसूस कर सकते हैं। विदेश में सेंसिटिव नेचर को अच्छा भी माना गया है, कई लोगों ने उसे कुछ लोगों ने बुरा भी कहा है। ज्यादा सेंसिटिव होना मतलब ज्यादा दुखी होना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परिस्थितियां बार बार दुखी करती है। तो कई लोग ये समझते हैं कि सेंसिटिव व्यक्ति जो होता है वो बहुत कायर होता है, भयभीत होता है बार बार चीजों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, विघ्नों से, समस्याओं से, पेपर से। और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों के दर्द दुख पीड़ा ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनमें वो पावर ज्यादा होती है अंडरस्टैंडिंग की। परंतु अध्यात्म मार्ग में यदि नेचर संवेदनाशील वाला पहलू ज्यादा है नेचर में, तो उसमें दुख ही दुख होता है, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ सहन करना है। और यदि व्यक्ति बार बार सेंसिटिव नेचर के वजह से अपसेट होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, कामनाएं बहुत रखता है, पूर्ण नहीं होती है, तो उसका अपना अंदर का आत्मविश्वास भी कम होता है, भय भी लगता है, एकाग्रता हो नहीं सकती। तो क्या किया जाए कि जिससे ये जो सेंसिटिव नेचर है उससे मुक्त हुआ जाए? क्या करें? इंग्लिश में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। HSP जो होते हैं हाईली सेंसिटिव पर्सन, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो उदास, किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया तो उदास, समा नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, अत्याचार अन्याय देख नहीं सकते। कोई अगर झूठ बोलता है तो वो समा नहीं सकते उस बात को। छुई मुई सेंसिटिव नेचर, फीलिंग देवी, सारे नाम है। टच मी नॉट झाड़ होता है ना, थोड़ा सा कुछ कहा कि दुखी, थोड़ा सा कुछ कहा कि आंसू, थोड़ा सा कुछ कहा कि रूठना, रूसना, मुरझाना, निराश होना, नाराज होना, बात नहीं करना, मुंह बनाना, किनारा कर लेना, ठीक से जवाब ना देना, क्लास में बंद आना, ग्रुप से एग्जिट अगर ज्यादा ही नाराज हो गए तो ग्रुप से बाहर और
एक दिन में दो ग्रुप से बाहर
और नाराज, तो उदासी रहना, दर्द महसूस होना, योग में रस न लगना, किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना, वो है अकेलापन। एक दूसरी भी अवस्था है योगी की, वो अवस्था दूसरी है, वो एकांत की अवस्था है। उसमें भी सबसे अलग रहता है व्यक्ति उसमें, परंतु परमानंद की अवस्था में रहता है, वो असंग में रहता है, निरसंग अवस्था है वो, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आत्मा इतनी भरपूर है, आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि किसी के संग की, किसी के साथ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो संपूर्ण आनंद का अनुभव करती है, आनंद मगन अवस्था, वो एकांत की अवस्था, वो अकेले, उसमें भी व्यक्ति अकेला ही है, सॉलिट्यूड में है, उसे किसी से बात करना पसंद नहीं, वो भी एक अवस्था है, परंतु वो एक दूसरी अवस्था है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उदासी की अवस्था, निराशा की अवस्था, दुख की अवस्था, डिपेंडेंस की अवस्था, अवलंबन की अवस्था। उसमें व्यक्ति निराधार हो जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज के लिए, ना तो वैसे ही सारे रहस्य ज्ञान के प्रकट होने लगते हैं। चेतना की वह उच्चतम अवस्था है जिसमें आत्मा अकेली है, परंतु आत्मा स्व में स्थित है, स्व केंद्रित है, निराधार है, निर्भय है, असंग है, निर्लिप्त है, अलिप्त है, स्वयं में ही आनंद का अनुभव करती है। विष विकार विषय विष के समान प्रतीत होते हैं, संसार तत्व यहाँ के वस्तु वैभव व्यक्ति सबसे ऊपर उठ जाती है, कोई उसे प्रभावित आकर्षित नहीं करता। ऐसी अप्रभावित स्थिति आत्मा की भी है, परंतु वो बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो सबसे निचली अवस्था है, सबसे नीचे की अवस्था है जिसमें व्यक्ति दुखी है। दुख अर्थात आत्माभिमानी स्थिति वहां है ही नहीं, वो देहभान है, वहां पर भी दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, पीड़ा है, दर्द है, अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही है, कामनाएं बहुत ज्यादा है किसी से, वो पूर्ण नहीं कर रहा है, बार बार दर्द अनुभव होता है। क्या ये आत्माभिमानी स्थिति है ही नहीं, ये तो संपूर्ण देहभान की स्थिति है, ये बहुत पीड़ादायी अवस्था है। और वो जो दूसरी अवस्था है वो आनंद मगन अवस्था है, मीठी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति साक्षी होकर संसार को देख रहा है, संसार का कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा है। जैसे आकाश, ऐसा लगता है कि धुआं आकाश को स्पर्श कर रहा है, परंतु आकाश अस्पर्शित रहता है, उसी तरह आत्मा अस्पर्शित रहती है संसार से। यहाँ है परंतु है ही नहीं। हाँ, ये तो हमने दूसरी अवस्था बताई, कंफ्यूजन इस अवस्था के साथ हो सकता है, इस अवस्था का। अब प्रश्न है इस अवस्था की, जहां पर व्यक्ति सेंसिटिव है, दुखी है, निराश है, परेशान है, उदास है, ये सारी चीजें हो जाती है वहां पर। डर है, अज्ञात सा डर है। किस चीज का डर है ये कहा नहीं जा सकता है, परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती है, एक एक परिस्थिति का डर है। तो क्या किया जाए जिससे इस सेंसिटिविटी से व्यक्ति आत्मा परे निकल जाए? सबसे पहले तो ज्ञान की कमी है, बिना ज्ञान के ये अवस्था या अज्ञान की अवस्था है। सूचनाएं सारी प्राप्त हो चुकी है, आत्मा परम धाम की निवासी है, आत्मा 84 जन्म लेती है, परमात्मा परम धाम का निवासी है, ब्रह्मा तन में आता है, संगम युग चल रहा है, ये सूचनाएं सारी प्राप्त कर ली है, परंतु ज्ञान नहीं है, ज्ञान की गहराई नहीं है, ज्ञान को नहीं समझा है। तो सबसे पहली स्टेज है ज्ञान को बढ़ाना, एक। दूसरा, सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिव नेचर, HSP जिसको कहते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, उसको सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी कि कौन से इमोशंस है जहां पर मैं बहुत सेंसिटिव हो जाता है। उसको कहते हैं इमोशनल जर्नल। तो एक ही जर्नल रखना होगा, इमोशनल जर्नल। जैसे एक दिन आई एम सैड, तो आज जो मैं दुखी हुआ उसके साथ में जोड़ना, किस कौन सा संकल्प उत्पन्न हुआ जिसने मुझे दुखी किया, कौन सा जज्बात, भावना, फीलिंग, इमोशन उत्पन्न हुई कि जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ। खाली जज नहीं करना, खाली लिख के रखना कि आज दुख हुआ, आज भय हुआ, आज उदासी आ गई, आज क्रोध आ गया, आज चिड़चिड़ापन आ गया। चिड़चिड़ापन क्रोध का ही अंश है। इरिटेशन, उदास, निराश, ये होना क्रोध के ही अंश है। क्यों हुआ? कुछ तो कारण होगा। इमोशनल जर्नल। तीसरा है, एक चार्ट है, काफी फेमस चार्ट है ये। इसमें 20 पॉइंट्स है इस चार्ट में, जो कि विदेश में काल हॉल करके एक डॉक्टर है, पीएचडी, उसने अपनी किताब में, उस बहन ने ये चार्ट लिखा है कि जो इमोशनल लोग होते हैं उन्हें ये चार्ट भरना है। 20 प्रश्न है चार्ट में और हर प्रश्न के उत्तर में चार उत्तर है, वो टिक मार्क करना है। पहला उत्तर स्ट्रांगली डिसएग्री, दूसरा डिसएग्री, तीसरा अग्री, चौथा स्ट्रांगली अग्री। सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी, सहमत हूं, नहीं हूं, ऐसे चार प्रश्न है। बिल्कुल नहीं हूं, थोड़ा हूं, हूं और स्ट्रांगली नहीं हूं, ये जो प्रश्न है इससे। और फिर उसके बाद में उसने एक स्केल दी है कि उससे हम ग्रेडिंग कर सकते हैं हम कहां हैं। अगर आपका स्केल 22-44 आ रहा है तो मतलब बिल्कुल इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं है। अगर 45-54 आ रहा है तो माइल्ड सेंसिटिव नेचर है। 55-69 आ रहा है तो इमोशनली सेंसिटिव है। और 70-82 बहुत ज्यादा आ रहा है, हर प्रश्न में स्ट्रांगली अग्री हो रहे हैं हम, चार चार मार्क हो रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रांगली इमोशनली सेंसिटिव है, वहां बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। प्रश्न है, एक प्रश्न है, चेंज स्केयर्स मी, जैसे ही कोई भी चेंज होता है उससे मुझे डर लगता है। अब इसका उत्तर देना है स्ट्रांगली डिसअग्री, बिल्कुल नहीं, डिसअग्री, हाँ मतलब ऐसा नहीं है, फिर अग्री, हाँ मैं मानता हूं, स्ट्रांगली अग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी थोड़ा सा चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, कमरा चेंज हो गया, ड्यूटी चेंज हो गई, टाइमिंग चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया तो मुझे एकदम से अंदर से डर लगता है। तो ये चेंज होगा कि ये चार प्रश्न, अगर इसका किसी ने चार नंबर दिया, स्ट्रांगली अग्री, बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ, मतलब चार मार्क्स। अगला प्रश्न है, आई हेट माई सेल्फ एंड हाउ इमोशनल आई एम, मुझे अपने आप से घृणा आती है, नफरत आती है, मैं ऐसा हूं और मैं इतना इमोशनल हूं, तो इसमें चार चार उत्तर वो लिखना। फिर उसके बाद में बहुत सारे 20 प्रश्न है टोटल, आई ऑफन डोंट नो वॉट इमोशंस आई एम फीलिंग एंड वाई आई एम फीलिंग अ सर्टन वे, मुझे खुद ही नहीं पता ये जो इमोशन चल रहा है ये कौन सा है, एंड वाई आई एम फीलिंग अ सर्टन वे, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ये जो भाव है मन में उठ रहा है ये क्या है और क्यों हो रहा है, इसके चार। अगर ऐसा है, स्ट्रांगली है, तो चार। फिर एक प्रश्न है, आई शॉप टू मच, बहुत ज्यादा खरीदी करता हूं, पानी बहुत पीता हूं, काम ज्यादा करता हूं, खाना बहुत खाता हूं, सोता बहुत हूं।
सेंसिटिव नेचर वाला इतना चेक नहीं करेगा उसको, तो एकदम
आई ऑफन कैंसल प्लान्स विद फ्रेंड्स बिकॉज आई डोंट फील लाइक विद देम, पहले मैं फ्रेंड्स के साथ में कहीं जाने का सोचता हूं, कोई प्लान बनाता हूं, बाद में तुरंत, क्योंकि मुझे फिर डर लगता है उनके साथ, पहले फ्रेंड्स के साथ रुकने में। आई अवॉइड सोशल एक्टिविटीज क्योंकि मुझे डर लगता है कि लोग मेरा विरोध ना करते, मीटिंग में जाने से डरते हैं क्योंकि मैं गया और लोग मेरा विरोध करेंगे, सोशल मीटिंग्स गैदरिंग्स में जाऊं तो वहां मेरा विरोध होगा किसी भी लिए। इसमें से चार पॉइंट्स, स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, इसके आधार से फिर ये आई हैव मोर इंटेंस रिएक्शन टू बैड न्यूज देन मोस्ट पीपल हैव, जैसे ही गलत न्यूज आ जाए, मतलब बैड न्यूज आ जाती है, किसी की बीमारी, किसी की मृत्यु या किसी की कुछ, एकदम से मुझे फील होता है, बहुत ज्यादा फील होता है, जितना रिएक्शन लोगों की होती है इंटेंस उससे मेरी कई गुना अधिक होती है। अगर ऐसा हो रहा है, यदि किसी मित्र को डजंट, इफ अ फ्रेंड डजंट रिटर्न माई कॉल और टेक्स्ट आई एज्यूम ही इज एंग्री विथ मी, यदि मैंने किसी को मैसेज भेजा और उसने उत्तर नहीं दिया तो मुझे लगता है ये मेरे से नाराज है या मेरे पर क्रोधित है, या मैंने कॉल किया और उसने नहीं उठाया तो इसका मतलब वो मेरे से नाराज है, एंग्री है। अगर इन इसके चार उत्तर ऐसा ही होता है, मतलब चार पॉइंट्स ऐसा होता है, तीन पॉइंट ऐसा नहीं होता है, दो पॉइंट ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं ऐसा। हाँ तुरंत हमने सोच लिया, हमने कॉल किया, वो बिजी होगा कहीं, खत्म, भूल गए, पर हमने कॉल किया और उसने उठाया क्यों नहीं, सोच रहे तर्क वितर्क कर रहे पूरी मन में कहानी बना रहे हैं, एक पूरा एक पूरे विजन वो विजन क्रिएट कर रहे हैं कि उसने देखा होगा और फिर उसने ये सोचा होगा, फिर उसने ऐसा सोचा होगा, फिर वैसा सोचा होगा, पूरा एकदम स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं माइंड में पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी है, जबकि कारण होगा कि वो मोबाइल उसके पास है ही नहीं, उसका कहीं कार में रुका है, कमरे में रुक गया है, साइलेंट पे होगा वो, कुछ कुछ कर रहा होगा, या उसको कोई परवाह नहीं है, देख लिया छोड़ दिया, गुम होगा तो आई ट्राई टू अवॉइड और हाइड माई इमोशन, मैं अपने इमोशंस को छुपाना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ लोगों से, दूसरों को नहीं बताना चाहता, दूसरों को पता ना चले। स्ट्रांगली अग्री, अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। यदि लोग, व्हेन अदर पीपल आर अपसेट आई गेट अपसेट टू, यदि दूसरे मेरे से नाराज हो जाए तो मैं भी उनसे नाराज हो जाता हूँ। ये प्रश्न है सारे। इफ समथिंग अनफेयर हैपन्स आई हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग इट गो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं उसे भूल ही नहीं पाता, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहता हूं, सोचते रहता हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, छोटी सी भी बात होगी मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, कोई फॉर्म भर रहे हैं सब लोग और मेरा ही फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उसका इतनी फीलिंग, इतनी फीलिंग, सबका फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जाम्पल आधार कार्ड, हमारे फॉर्म में कहीं मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, हमारा वापस कर दिया गया, सारा का जमा हो गया, मेरा नहीं हुआ, अरे तुम्हारा नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो यहाँ बात है इमोशनल नेचर की। मेकिंग डिसीजन इज डिफिकल्ट, कोई भी निर्णय करना जीवन का, कोई भी निर्णय, मधुबन में रहना है, सेंटर में रहना है, घर में रहना है, नौकरी करना है, नहीं करना है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, छोटे छोटे डिसीजन जीवन के, इधर जाना है, उधर जाना है कि नहीं जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो अशोक भाई आज मुरली में जाऊं, क्लास में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये डिसीजन डिफिकल्ट तो नहीं होता है ना, कभी कभी होता है कितना अच्छा तो क्या चूज क्या करते हो दोनों में से, इसलिए लेट हो जाता है सोच उदड़बुन में फिर। तो मेकिंग डिसीजन इज डिफिकल्ट, स्ट्रांगली डिसएग्री, हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, नहीं, हाँ कभी कभी होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारा चार्ट है इमोशनल। तो सबसे पहले बताया, फर्स्ट थिंग इज क्या बताया, फर्स्ट थिंग इमोशनल सेंसिटिविटी से छूटने के लिए ज्ञान, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का अध्ययन एक, दूसरा इमोशनल डायरी, इमोशनल जर्नल जिसको कहते हैं, वो जर्नल रखना कि रोज रात में एक इमोशनल जर्नल रखना कि आज मुझे सैड फीलिंग आई, एकदम सैड लगा, उदासी लगी, एकदम ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, सब स्वार्थी है, एकदम से एकदम ऐसा लगा कि बस मैं अकेला हूं, इन सबको छोड़ दूं, अभी अलग हो जाओ, बिल्कुल बात नहीं करना इन लोगों से, ऐसा फीलिंग आ गई, या तो लगा कि बस निराश हो गया, या तो एकदम इरिटेशन हुआ, या तो मेरा विरोध किया गया तो एकदम क्रोध हुआ, या तो मुझ पर कुछ किसी ने आरोप कर दिया झूठा तो एकदम से पूरा नींव हिल गई, यहां आने की क्या फायदा हुआ, ये सारे विचार आने लगे, क्यों आए, उधर ही अच्छा था, वगैरह वगैरह सारे विचार, इमोशंस, दिस इज नोन एज इमोशनल डायरी। फिर उसके बाद में ये चार्ट, 20 प्रश्न है इसके, इसको हम भेज देंगे उसमें, इमोशनल जिसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, ये सेल्फ असेसमेंट तीसरा। चौथा है इमोशनल ट्रिगर्स कौन कौन से है, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना कि मेरे कौन कौन से ट्रिगर है, कब कब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो जाता हूं, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा, एकाग्रता खत्म होगी, डर आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो शायद इसका भी बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे डराती है, कौन सी चीजें मेरी एकाग्रता भंग करती है, कौन सी चीजें मेरा आत्मविश्वास कम करती है। हो सकता है बार 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 असफलता आए तो आत्मविश्वास कम हो जाए। तो चौथा है इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर अर्थात ट्रिगर कारक कहो या उत्तेजक पॉइंट ट्रिगर फिलिप, कौन सी वो बातें हैं कि कारक जिसको कहते हैं कारक, ऐसे कौन से वो कारक है, ऐसे कौन से वो उत्तेजक है, ऐसी कौन सी वो स्टिमुलाए है कि जो आते ही ये हो जाता है। अभी सब ठीक चल रहा है, जैसे ही किसी ने विरोध किया कि स्थिति बिगड़ जाती है, जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, ये तुम्हारी आदत बन गई। यदि किसी ने हमको लेबल लगा दिया कि ये तुम ऐसे हो, तो उसे बिल्कुल नाराज, उसको फाइट करेंगे, उसको कुछ करेंगे, कहां आत्माभिमानी स्थिति, वो सब गया और सीधा निचले तल पर गिर जाती है आत्मा, ब्लेम गेम चालू हो जाता है वहां पे। तो सेंसिटिव नेचर व्यक्ति का और एक चीज है, एक तो खुद को ब्लेम करेंगे या दूसरों को ब्लेम करेंगे, ये दो चीज है, या तो सारा आरोप खुद पर मढ़ेंगे या फिर दूसरों पर, कभी उधर कभी इधर, कभी दूसरों पर करना फिर भी ठीक है, पर खुद पर करना और खुद को गिराना ये ज्यादा नुकसानकारक है आत्मा को, क्योंकि ये आत्महत्या जैसा है। आत्मा को हम ये कर रहे हैं, हम आत्मा का खून कर रहे हैं, स्वयं को गिराना, समान तुम हो, महान आत्मा है, तुम हो श्रेष्ठ आत्मा है, सृष्टि की सर्वोपरि आत्मा है, और फिर ये सोचना कि दूसरे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये लोग मुझे कम सोचते हैं, अर्थात तुम उसे स्वीकार कर रहे हो, उसने मेरे लिए ये कहा अर्थात मैंने उसे स्वीकार किया। अरे भगवान जो कह रहा है तुम महान आत्मा, उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसने कहा है कि तुम ऐसी हो, उसको स्वीकार कर लिया। तो खुद को ब्लेम करना ये ज्यादा नुकसानकारक है, ज्यादा डेंजरस है, सेल्फ सैबोटेजिंग जिसको कहते हैं, आत्महत्या जैसा है वो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और फिर दूसरा है दूसरों को ब्लेम करना। अच्छा, दूसरों को ब्लेम करा और उसने अगर फील किया तो उसका नुकसान है, पर दूसरों को ब्लेम किया पर उसको कोई प्रभावित ही नहीं हुआ, तो वो दूसरों को ब्लेम करना, ब्लेम गेम खुद पे दूसरों पे, खुद पे कभी दूसरों पे कभी खुद पे, कभी दूसरों पे कभी खुद पे, ये गेम चालू रहता है। ये गेम में जो आत्मा उलझी हुई है वो कहां से योग और कहां से एकाग्रता, और इसके साथ भय है, इसके साथ एंग्जाइटी है, इसके साथ में डिप्रेशन है, सब कुछ जुड़ा हो जाता, जुड़ना चालू हो जाता है फिर एक एक करके। इसके लिए सेंसिटिव नेचर जो है ये कोई साइकेट्रिक कंडीशन तो नहीं है, पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जरूर है। उससे आत्मा को अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही मेहनत से आइडेंटिफाई करके उठना पड़ेगा, नहीं तो कैसे उठेगी वो, क्योंकि इमोशंस जो है वो बहुत गहरे होते हैं। तो ये कुछ बातें उसमें करनी है, और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दो लोग ज्ञान में चलते हो और एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए कुछ ऐसा बोले कि दूसरी आत्मा न चाहते हुए भी संकल्प में उलझ जाए, जबकि ये बात पहले वालों को पता है कि दूसरा अभी मजबूत नहीं है, और कहे मैं तो तुम्हें मजबूत करने के लिए ये सब कह रहा था, तो इससे विकर्म किसके द्वारा हुआ। दो आत्माएं हैं, एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को कुछ कहा, और जो आत्मा दूसरी आत्मा को कुछ कह रही है उसे पता है जो ये कहा जा रहा है उसके वजह से दूसरी दुखी होगी, और वो ये कहती है कि मैं इसे दुखी इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसके जीवन में पेपर आए, विघ्न आए, समस्या आए और ये शक्तिशाली बन जाए। परंतु प्रश्न ये है, ये काम तुम्हें दिया किसने है? तुम्हें किसने कहा है कि उसके सामने पेपर बनो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम उसको विघ्न विनाशक का पाठ पढ़ाओ? वो आत्मा अगर ये समझे कि मैं इसे इसके द्वारा विघ्न विनाशक बनूंगा तो ये दूसरी बात है, पर तुम्हें किसने कहा? पेपर आएगा तो आगे बढ़ेगा, वो हम सोचेंगे अगर जो जिस पर आ रहा है, पर अगर मैं ये सोचूं कि मुझे इसके सामने पेपर बनना है ताकि ये शक्तिशाली बने, पर तुम्हें ये कहा किसने, तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी है, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया है, ये अनअधिकृत भावना है तुम्हारी, अनऑफिशियल तुम्हारी भावना है, ये इसमें एक हिंसा समाई हुई है, ये हिंसक भावना है, ये सृष्टि नहीं परमात्म नियम के विरुद्ध है। इसलिए तुम ये जो कह रहे हो इसके लिए विकर्म क्या कहो इसको, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं, इसमें उसका अहंकार ही परिलक्षित हो रहा है, एक तो अहंकार, दूसरा उसमें हिंसा, और तीसरा तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम दूसरों को टच करो। तुम्हें किसने कहा है तानाशाह बनने के लिए यहाँ? इसलिए जो व्यक्ति ये कर रहा है दोष उसी के पास, उसके ऊपर आता है। तीसरा प्रश्न, मैं कुमार 25 साल से ज्ञान में हूँ, आजकल मुझे इविल सोल का सामना करना पड़ता है, मुझे डर है कि कहीं मेरे में इविल सोल प्रवेश न कर जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वमान का अभ्यास करता हूँ, लेकिन फिर भी रात में 12 बजे के बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, कभी भी अकेले जाने व सोने से डर लगता है। मुझे बताया कि किसी के शरीर में प्रवेश करे तो उससे कैसे सेफ रहे या उससे कैसे बात करे, मेरा डर बढ़ रहा है, मेरी प्यूरिटी अच्छी नहीं है, इंटरनेट का एडिक्शन है, कृपया समाधान करें। इसमें दो चीजें हैं, इस सृष्टि में हम ये क्यों सोच रहे हैं केवल इविल सोल्स ही है, इस सृष्टि में दो सोल्स हैं, एक अच्छी आत्मा है, एक बुरी आत्मा है, एक भटकती हुई आत्माएं भी है, तो अच्छी बहुत सारी आत्माएं हैं जो गर्भ को ढूंढ रही है, उन्हें मिल नहीं रहा है अच्छी आत्माओं को भी, क्योंकि जो शक्तिशाली आत्मा है, जो योगी आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जिनका आनंद संकल्पों में था, देह में नहीं था, विकारों में नहीं था, भोग में नहीं था, विलास में नहीं था, ऐसी आत्माएं भी इस संपूर्ण सृष्टि कायनात में घूम रही है, वो भी गर्व की तलाश में है, ऐसे माँ बाप की तलाश में है, जो चाहे ज्ञान में चलते हो, जो पवित्र हो, ऐसे शुद्ध आत्माओं की तलाश, ऐसे शुद्ध गर्भ की वो तलाश में है, और ऐसी जो आत्माएं हैं, जब वो भटक रही है तब आत्माओं को मार्गदर्शन भी करती है, वो अभी प्रवेश नहीं की है। दूसरे प्रकार की आत्माएं हैं जिन्होंने दर्द में शरीर छोड़ा है, दुख में शरीर छोड़ा है, ऐसी भी आत्माएं हैं, बदले की भावना में शरीर, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, वो आत्माएं भी भटक रही है संसार में, तो वो है। अब एक ये ग्रुप है आत्माओं का, एक ये ग्रुप है आत्माओं का, और एक आत्मा इधर है देह के अंदर। अब जिसकी जैसी स्थिति होगी और जिसके जैसे संकल्प होंगे, वो उसी तरह की आत्माओं को आकर्षित करेगी, जिसमें दर्द है, दुख है, पीड़ा है, मिजरी है, सौरो है, सफरिंग है, भय है, इनसिक्योरिटी है, तो ऐसी आत्माओं के में वो ये जो भटकने वाली आत्मा है उनको ज्यादा आकर्षित करेगी, उन्हीं में वो आत्माएं प्रवेश करेगी, और जिनमें अपवित्रता के संस्कार है उन आत्माओं के तरफ ये जो भटकने वाली आत्माएं ज्यादा आकर्षित होती है जिनमें। अब ये एक दूसरा, जो संपूर्ण पवित्रता की जहां धारणा है, जिनका आनंद संकल्पों के तल पर है, देह में नहीं है, आत्मा के तल पर है, देह में नहीं है, विषय वस्तुओं में नहीं है, जो संपूर्ण पवित्रता में है, वो आत्माएं उन आत्माओं को आकर्षित करेगी जो अच्छी है, और वो अच्छी आत्माएं उनका मार्गदर्शन भी करेगी। एक है परमात्मा का मार्गदर्शन, पर यह है उनको कुछ ऐसी टचिंग्स भी होंगी जो अपने स्वपुरुषार्थ से कभी भी नहीं हो सकती है। हम कोई एक चीज से छूटना चाहते हैं, नहीं छूट पा रहे हैं, परंतु नहीं हो रहा है, तो ऐसी कुछ आत्माएं हमको टच करेगी, सिखाएगी, मार्गदर्शन करेगी। जैसे रेडियो है, रेडियो का हम ट्यूनिंग करते हैं, एक चैनल आ गया 104, ठीक है, 104 से थोड़ा सा भी इधर गया तो आवाज, 104 से थोड़ा सा भी उधर गया तो आवाज, नॉइज। वैसे ही जो पवित्र आत्माएं हैं और अपनी पवित्रता में स्थित है, वैसे ही उन आत्मा का ट्यूनिंग उन आत्माओं से हो जाता है, चाहे वो भटकती हुई कहीं पर भी दूर हो, परंतु जैसे ही ट्यून होगा उस आत्मा के द्वारा भी इस आत्मा को मदद मिलना चालू हो जाएगी। सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। उसी तरह जो एक आत्मा है जो पवित्रता में है, जो आत्मा है जिसकी पवित्रता बार बार खंडित हो रही है, वो आत्मा है उसे देह देखने में रस है, ये देह देखने में रस है और इस देह को देखकर उत्तेजना उत्पन्न हो रही है। जहां पर स्वराज्य अधिकारी की अवस्था नहीं है ऐसी आत्माएं जहां अपवित्रता है, ऐसी आत्माएं जहां भय है, ऐसी आत्माएं जिनमें जो इन सब बातों का ज्यादा चिंतन करती है, उन्हीं की तरफ वो भूत प्रेत जो बुरी आत्माएं भटकती आत्माएं ज्यादा आकर्षित करेगी। उनको देह चाहिए, वो देह में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगी। चलो प्रवेश न भी करा तो उनके स्वप्न में प्रवेश करेगी, स्वप्न में प्रवेश न भी करे तो उनके संकल्पों में, उनकी इमोशंस में, उनकी भावनाओं में प्रवेश करती रहेगी, क्योंकि ट्यूनिंग ही वहां रखा है बराबर। भूत उन आत्माओं का ट्यूनिंग सब 100 है तो इन्होंने बराबर 100 करके रखा है, और जैसे ही 100 किया तो उनकी भी टचिंग्स आने लगती है, उनके अंदर बदले की भावना, तो वो बदले की भावना इधर प्रकट होती है, उनके अंदर भय, उनके अंदर असुरक्षा, वो भटकती हुई आत्माओं में, तो इनमें भी वही, क्योंकि ट्यूनिंग इनका और उनका सेम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, आकर्षण का नियम, क्योंकि संकल्प उनके बारे में कर रहे हैं। इसलिए एक दरवाजा है, वो दरवाजा खोल रहे हैं, उस खोलने से उन आत्माएं प्रवेश कर रही है। इधर जो अच्छी आत्मा है, जो संकल्पवान आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, वो भी दरवाजा खोल रही है, और जो अच्छी आत्मा है सृष्टि में घूम रही है आज भी, उनके वाइब्रेशंस को वो कैच कर रही है। और बुरी आत्माएं कभी भी उन आत्माओं की तरफ आकर्षित नहीं होगी जो शक्तिशाली संकल्प में स्थित है। इसके लिए जो प्रश्न है उसमें जो कहा है इन्होंने, इंटरनेट का एडिक्ट भी हूं और प्यूरिटी भी अच्छी नहीं है, काम इन पर करना है, काम उस संकल्पों पर नहीं करना है। जब प्यूरिटी अच्छी हो जाएगी तो स्वतः ही वो दरवाजा बंद हो जाएगा अपने आप। हाँ, तो अपने आप वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड की ट्यूनिंग उधर, रेडियो की ट्यूनिंग ही बराबर वहीं करके रखी है। ट्यूनिंग को चेंज करना है प्यूरिटी की, श्रीमद अनुसार वो 10 बजे या समय का संबंध नहीं है इसके साथ, क्योंकि वो हाँ ये 12 बजे 4 बजे वो तो जैसी कहानियां सुनी है लोगों ने उस अनुसार सारे अपने बनाते हैं। जिसने जो सुना है, जिसने जैसा सुना है, वो उस अनुसार सारा कुछ करता है। सारा कुछ संकल्पों का खेल है, सब कुछ संकल्पों का। एक गुरु अपने शिष्य को, अपना एक शिष्य होता है, बार बार जो भी बिजनेस करता है फेल, जो भी बिजनेस करता है फेल, और उसको सर हर चीज का डर लगता है। गुरु के पास जाता है, गुरु उसे एक ताबीज देता है, कहता है ये ताबीज लेकर तू रात भर शमशान घाट में रुक, तुझे कुछ नहीं होगा, इस ताबीज में जादुई शक्ति है, इसमें मैंने एक मंत्र डाल रखा है। वो कहता है मैं शमशान घाट में आज तक गया नहीं, मुझे तो बस शव यात्रा जाती होती उससे भी डर लगता है। वो कहता है ये तू विश्वास रख, इसमें मैंने मंत्र डाला है। वो जाता है वहां, रुकता है रात भर, और सुबह एकदम खुशी खुशी गुरु के पास आता है कि सही में आपने जो दिया ये तो जादुई ताबीज है। तो वो जाता है अभी मैं अपना बिजनेस करूंगा, और बिजनेस चालू करता है फिर से, और इतना सफल हो जाता है क्योंकि भय उसका खत्म हो गया है। बिजनेस एक साल तक पूरा करता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। वापस गुरु के पास आता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मंत्र इसमें डाला था उसके वजह से मैं बहुत सफल हुआ, आपका बहुत धन्यवाद। गुरु कहते हैं ताबीज को खोलो, खोलता है तो कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है उसमें, विश्वास का नियम है, लॉ ऑफ फेथ, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली धातु है। वो उसका समय से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारा योग सही लगता है उसकी क्या निशानी है, ज्ञान का मनन चिंतन करने की विधि क्या है। इसका उत्तर कई बार दे चुके हैं, ज्ञान का मनन चिंतन, ये सारा जो चल रहा है ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन ही चल रहा है। हमारा योग सही लगता है उसकी निशानी क्या है, क्या निशानी है? चेहरे पर खुशी, एक और हर कार्य में सफलता, योग में इंटरेस्ट, और आवाज में, आवाज में मधुरता। अच्छा कैसे? जैसे आपकी आवाज है वैसे हो जाएगी मधुर। एक तो सबसे पहले खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, दुख उदासी निराशा संसार से अपेक्षाएं, किसी का संग चाहिए, किसी के एक्सपेक्टेशन, कोई साथ दे, कोई मुझे शेयर करे अपने दुख, मैं किसी के साथ शेयर करूं, ये सब चीजों से ऊपर, सब ऊपर। ओके, कोई साथ में है तो ठीक, कोई नहीं है तो बहुत अच्छा, सब अच्छा, हर चीज में अच्छा। कुछ हो रही है, बारिश बहुत आ रही है, बहुत अच्छा, बारिश खत्म हो गई, धूप आ गई, बहुत अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। जब बारिश आ रही है तो बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश बंद हो जाएगी तो कुछ और होगा, ठंड आ जाएगी, उससे क्या है, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, नो कंप्लेंट्स, कोई भी चीज की कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी ये कभी को जो है जैसा है बस, तो खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, कंप्लेंट नहीं रहेगी, उलाहने नहीं रहेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी, और योग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और आगे जाओ, और आगे, और आगे। उस दिन क्लास में सुनाया था ना, और आगे और आगे और आगे और आगे, यही अध्यात्म है। हेलन नाम का सूफी संत, उसको पूछा गया कि अध्यात्म का रहस्य क्या है, वो कहता है अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे, रुकना ही नहीं है। थोड़ा बहुत साक्षात्कार हो गया किसी को, थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, आंसू आ गए, बाबा दिख गया, यहाँ खड़ा है, वहां खड़ा है, पीछे खड़ा है, हाथ है, और लगता है अरे बाप रे बाप, पता नहीं मेरा क्या, कितनी भयंकर मेरी उन्नति हो गई है, मैं तो बहुत ही पहुंच गया हूँ आगे, बहुत मैं आगे चला गया हूँ। अध्यात्म में रुकना ही नहीं होता है, ये थोड़े बहुत अनुभव हो गए और समझना बहुत अच्छा, मेरा सब कुछ हो गया। अतृप्त चाहिए, अतृप्ति, डिवाइन अतृप्त, दैवी असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट, कुछ भी हो जाए तृप्त होना ही नहीं, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। तो ये आने दो, अतृप्त रहना है, दैवी असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट, इस एक रोग से पीड़ित रहना चाहिए सबने, ताकि रुकना ही नहीं। अच्छा इधर ही आ जा। तो उत्तर है ज्ञान विधि, अगली क्लासेस में कहीं ना कहीं आती रहेगी। ओम शांति।